समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
सुप्रभात, आकाशवाणी एफएम गोल्ड चैनल पर आपका स्वागत है। एक नई सुबह की शुरुआत और हम आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे में। अगले आधे घंटे में लाएंगे आप तक देश दुनिया के समाचार और वो सभी जानकारी जिसका आपसे है सरोकार। आज सवेरे के इस अंक में मैं हूं विशाल शर्मा और मेरे साथ हैं सुभद्रा रामचंद्रन। गुड मॉर्निंग सुभद्रा।
Hello Vishal, good morning to you and hello there all you lovely people tuned in to hear our news magazine show Aaj Savere. We have lots to share with you friends, so let it all begin with some news headlines. President of Tanzania Samia Suluhu Hassan will hold bilateral dialogue with Prime Minister Narendra Modi in New Delhi today. During the meeting, memorandum of understandings, MOUs will be exchanged in various areas between the two sides. Tanzanian President arrived yesterday in New Delhi on a four-day state visit to India at the invitation of the President, Draupadi Murmu. Tanzanian President will be accorded a ceremonial welcome at the forecourt of Rashtrapati Bhavan today, and then she will participate in the wreath-laying ceremony to be held at the Rajghat. Israel's ambassador to the United Nations has accused Palestinian Islamist group Hamas of war crimes, vowing that it was time to obliterate Hamas terror infrastructure as the UN Security Council met to discuss the conflict. In a dramatic assault launched from the Palestinian enclave of Gaza yesterday, Hamas militants stormed into Israeli towns, killing more than 700 Israelis and escaping with dozens of hostages in the deadliest day for Israel since the 1973 war. These are war crimes, blatant documented war crimes, said Israeli UN Ambassador Gilad Erdan ahead of the closed-door meeting of the 15-member Security Council meeting in New York. Today, Israel pounded Gaza, killing hundreds of people in retaliation. Erdan appealed for the international community to fully support Israel and condemn the actions of Hamas.
इजराइल हमास संघर्ष के कारण एयर इंडिया ने तल अवीव आने जाने वाली सभी उड़ानें शनिवार तक रद्द कर दी हैं। एयरलाइन ने बताया है कि यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा को देखते हुए ये उड़ानें निलंबित की गई हैं। एयरलाइन ने यह भी कहा है कि वो उन यात्रियों की हर संभव सहायता करेगी जिन्होंने इस दौरान किसी भी उड़ान से बुकिंग की है। सिक्किम में सेना की त्रिशक्ति कोर के जवान लापता सैनिकों की तलाश कर रहे हैं। 4 अक्टूबर को हुई दुर्घटना के बाद लापता 23 में से एक सैनिक को जीवित सुरक्षित बचा लिया गया था, जबकि बरामद किए गए 8 शवों की अब तक पहचान की जा चुकी है। बाकी जवानों की तलाश जारी है। त्रिशक्ति कोर उत्तरी सिक्किम के लाचेन, लाचुंग, थांगु और चुंगथांग इलाकों में फंसे हुए 1,700 पर्यटकों को भी सहायता उपलब्ध करा रही है। उन्हें खाने पीने के सामान, चिकित्सा सहायता और संचार सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। खराब मौसम के बीच सेना पर्यटकों को सुरक्षित निकालने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। उत्तराखंड में कल देर रात नैनीताल जिले के मंगोली घटकड़ के पास 31 यात्रियों को ले जा रही एक बस के खाई में गिर जाने से 7 लोगों की मृत्यु हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। बस में हरियाणा के हिसार जिले के स्कूली शिक्षक थे जो नैनीताल की यात्रा से लौट रहे थे। घायलों को उपचार के लिए हल्द्वानी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
The United States will provide munitions and equipment to Israel and boost American forces in the Middle East in response to the attacks by Palestinian militant groups Hamas, the Pentagon said yesterday. U.S. Defense Secretary Lloyd Austin in a statement said that the United States government will be rapidly providing the Israel Defense Forces with additional equipment and resources, including munitions. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu spoke with the U.S. President Joe Biden yesterday, who showed his unconditional support to his country. Earlier, Prime Minister Netanyahu also spoke with other world leaders, including German Chancellor Olaf Scholz, Ukrainian President Volodymyr Zelensky, Italian Prime Minister Giorgia Meloni, and British Prime Minister Rishi Sunak, who also supported the Israeli side for defending its country. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu thanked Biden for the unreserved support and stressed that a prolonged campaign is necessary.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 12 अक्टूबर तक इटली और फ्रांस की यात्रा पर रहेंगे। दो देशों की यात्रा के पहले चरण के दौरान रक्षा मंत्री का रोम में इतालवी रक्षा मंत्री गुइडो क्रिसोटो से मिलने का कार्यक्रम है। यात्रा के दूसरे चरण में श्री सिंह पेरिस में अपने समकक्ष फ्रांसीसी सशस्त्र बल मंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू के साथ 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता का आयोजन करेंगे। भारत और फ्रांस ने हाल ही में रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया था। रक्षा मंत्री औद्योगिक सहयोग के संभावित अवसरों पर चर्चा के लिए रक्षा उद्योग के सीईओ और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत करेंगे।
External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar held a meeting with Tanzanian President Samia Suluhu Hassan yesterday. He thanked her for appreciating Prime Minister Narendra Modi's initiative for the inclusion of African Union as a permanent member in the G20. President of Tanzania Samia Suluhu Hassan arrived in New Delhi yesterday on a four-day state visit to India. This is her first visit to India since the assumption of office of President. Tanzanian President will be accorded a ceremonial welcome at the forecourt of Rashtrapati Bhavan today. Thereafter, she will participate in the wreath-laying ceremony to be held at the Rajghat. She will also hold a detailed bilateral dialogue with Prime Minister Narendra Modi. In the evening, she will meet President Draupadi Murmu. Tomorrow, the Tanzanian President will participate in a business and investment forum. In Afghanistan, death toll from the strong earthquake has risen to over 2,400 as search and rescue efforts continue amid reports that some people may be trapped under collapsed buildings. It was one of the deadliest earthquakes to strike the country in two decades. UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs said at least 465 houses had been reportedly destroyed and 135 were damaged. The 6.3 magnitude quake struck about 40 kilometers from the western city of Herat on Saturday. Many buildings were damaged, trapping people under rubble, and there were at least three powerful aftershocks.
और आईसीसी विश्व कप क्रिकेट में भारत ने अपने अभियान की शुरुआत जीत से की है। भारत ने कल रात चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया के 200 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 41 ओवर और 2 गेंदों में 4 विकेट के नुकसान पर 201 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। विराट कोहली ने 85 और केएल राहुल ने नाबाद 97 रन बनाए। आज हैदराबाद में न्यूजीलैंड का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। और अब खबरें प्रमुख महानगरों से जुड़ी हुई। सबसे पहले सुभद्रा, आपके पास क्या क्या खबरें हैं चेन्नई, बंगलुरु और हैदराबाद से?
या स्टार्टिंग विद न्यूज फ्रॉम चेन्नई, द स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड अक्टूबर 7 एज नीलगिरी टार डे, विच विल बी ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर फ्रॉम नाउ ऑन। अ पोस्टर वाज आल्सो रिलीज्ड ऑन द ओकेजन। द डे वाज डिक्लेयर्ड इन ऑनर ऑफ ईआरसी डेविडर, हूज बर्थडे फॉल्स ऑन अक्टूबर 7। Davidar pioneered one of the first studies on Nilgiri Tar, the state animal of Tamil Nadu, in 1975. The Nilgiri Tar project will be launched by Chief Minister on 12th October. State Forest Secretary Supriya Sahu said last month, Nilgiri Tar project director held a meeting at Coimbatore to standardize a methodology for Nilgiri Tar population estimation. A team of experts, including P.S. Isa, James Zakaria, Mohan Raj and T.R. Shankar Raman participated, besides Bhuminathan and the president of the Worldwide Fund for Nature India. More news from Chennai. The Economic Offences Wing, CID Police, have issued fresh summons to film producer cum actor R.K. Suresh, who is believed to be in Dubai after his suspected involvement in the 2,438 crore rupees Arudra Gold Trading Company private case. The company had swindled the amount from more than 1 lakh depositors after luring them to invest in their various schemes. The EOU CID officials also sought Interpol's help to nab all the absconding directors of Arudra hold up in Dubai. They had already issued a lookout circular against R.K. Suresh and three other suspects involved in the scam, based on the complaint of the actor Russo, who was arrested in connection with the financial scam. EOW officials summoned Suresh for inquiry. As there was no response from him, the cops started their probe and confirmed that he went to Dubai. Bengaluru news now. Karnataka Deputy Chief Minister and Bengaluru in charge Minister D.K. Shivakumar has stated that a solution to the severe traffic congestion on Bengaluru's outer ring road will be found within the next 100 days. The Outer Ring Road Companies Association had appealed to the state government to take up remedial measures to decongest the outer ring road burdened with bottlenecks. Mr. Shivakumar informed that a new peripheral ring road is being constructed in Mahadevpura and railway overbridge will be constructed affected after obtaining required land from the Forest Department. He also said that encroachment of stormwater drains are being cleared to ease rainwater flow. He further said that waterlogging will be prevented and potholes filled up to ease traffic movement. Hyderabad News Now. The South Central Railway approved the extension of 4 more trains to benefit passengers in their respective areas. Union Tourism Minister G. Kishan Reddy will flag off the train from Kazipet to Hadapsar, Pune from Secunderabad station later this morning. He will also virtually flag off the Kurnool, Jaipur, Bodhan, Karimnagar, Raichur, Nanded trains. Starting from tomorrow, the Jaipur Weekly Express running from Jaipur to Kachiguda will be extended to Kurnool city in Andhra Pradesh. Additionally, Hadapsar, Pune, Hyderabad, Hadapsar Tri-Weekly Express will be extended to Kazipet via Bhuvnagiri and Janagama. The HS Nanded, Tandur, Parbhani, Delhi Express will be extended to Raichur, whereas Karimnagar, Nizamabad, Karimnagar daily passenger will be extended to Bodhan. And Vishal, over to you now for rest of the news.
जी सुभद्रा, दिल्ली की खबरों की बात करें तो दिल्ली के लोक निर्माण विभाग मंत्री आतिशी ने कल राजधानी के जनकपुरी और तिलकनगर की प्रमुख सड़कों का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने सड़कों, फुटपाथ, हॉर्टिकल्चर, ड्रेनेज और क्रॉसिंग व्यवस्था के बेहतर न होने पर अधिकारियों को फटकार लगाई. मंत्री आतिशी ने अधिकारियों को क्षेत्र की सभी सड़कों को बेहतर बनाने के लिए एक सप्ताह के भीतर योजना बनाने के निर्देश भी दिए. उन्होंने सड़कों पर पैदल यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा में बाधा बन रहे अवरोधकों को भी तुरंत हटाने के लिए कहा. इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों की जिम्मेदारी है कि वे अपने क्षेत्र की सड़कों को बेहतर बनाने पर ध्यान केन्द्रित करें. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निर्माण और विध्वंस स्थलों से निकलने वाले मलबे को रिसाइकिल कर टाइल्स, ईंट समेत अन्य उत्पाद बनाने वाले सीएनडी वेस्ट रिसाइकिलिंग प्लांट का कल जहांगीरपुरी में उद्घाटन किया. लगभग 7 एकड़ में फैले इस आधुनिक प्लांट में रोजाना 2000 टन वेस्ट मटेरियल की रिसाइकिलिंग की जा सकेगी. दिल्ली के अलग अलग इलाकों से मलबा लाकर यहां रिसाइकिलिंग किया जाएगा और निर्माण स्थलों में इस्तेमाल होने वाले कई उत्पाद बनाए जाएंगे. इस मौके पर श्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली को खूबसूरत बनाने के लिए यह प्लांट बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि इस प्लांट के खुलने के बाद अब दिल्ली को मलबे से छुटकारा मिल जाएगा. मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली में अभी करीब 6500 टन मलबा रोजाना निकलता है, जिसे रिसाइकिल करने के लिए यह चौथा प्लांट खोला गया है. आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक लाइव फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे डेंगू बुखार, कारण, लक्षण और निवारक उपाय विषय पर विशेष चर्चा प्रसारित करेगा. चर्चा में नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में मेडिसिन विभाग के डॉ पीयूष रंजन भाग लेंगे. कार्यक्रम के दौरान डेंगू संक्रमण के उपाय, उपचार के तरीके और अन्य संबंधित प्रश्नों के बारे में श्रोता विशेषज्ञ से दूरभाष संख्या 011-23-71-7106 और 011-23-31-4444 पर फोन कर सवाल पूछ सकते हैं. व्हाट्सएप के माध्यम से 9289-09-4044 पर प्रश्न भेजे जा सकते हैं. ये कार्यक्रम एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है. और अब रुख करते हैं मुंबई का. नवी मुंबई में अनुमति के बिना निर्माण कार्य करने के लिए 7 डेवलपर्स के खिलाफ अपराध का मामला दर्ज किया गया है. नवी मुंबई नगर निगम के एक अधिकारी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने शनिवार को महाराष्ट्र क्षेत्रीय और नगर नियोजन अधिनियम के तहत यह मामला दर्ज किया. डेवलपर्स कथित तौर पर नवी मुंबई नगर निगम की अनुमति के बिना तुरभे में 7 जगहों पर अवैध निर्माण गतिविधियां कर रहे थे. राज्य परिवहन स्लीपर बस सेवा अब सिंधुदुर्ग जिले से भी उपलब्ध होगी. ये बसें बांदा से बोरीवली मुंबई वाया राजापुर चिपलून, बोरीवली मुंबई वाया कोल्हापुर पुणे और लातूर 3 रूटों पर चलेंगी. यात्रियों को ये सेवा नियमित बस किराए पर उपलब्ध कराई जाएंगी. महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को भी रियायतों का लाभ मिलेगा. इस बस में 30 स्लीपर सीटें हैं और बसों में ट्रैकिंग डिवाइस भी लगाए गए हैं. आकाशवाणी एफएम गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे विशाल और सुभद्रा के साथ. और अब आपको बताए देते हैं मौसम की जानकारी. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मौसम की बात करें तो आमतौर पर आज दिल्ली में बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मुंबई में आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। और कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है।
Chennai is expected to have a partly cloudy sky with the possibility of moderate rain or thunderstorm. The minimum temperature will be 26 degrees Celsius, maximum will be around 32. Bengaluru is expected to have generally cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The minimum temperature will be 20 degrees Celsius, maximum will be around 30 degrees. Hyderabad is also expected to have partly cloudy sky with haze. The temperature will hover between a minimum of 23 degrees and the maximum of 34 degrees Celsius.
मौसम के बाद अब दुनिया रंग बिरंगी में कुछ रोचक खबरें रोचक अंदाज में हमारे सहयोगी निखिल कुमार के साथ।
नमस्कार श्रोताओं, हमारी धरती रहस्यों से भरी हुई है। यहाँ कई ऐसे जीव जंतु सदियों से रह रहे हैं जिनके बारे में अभी भी हमें कुछ भी नहीं पता है। जब इनकी जानकारी हमारे सामने आती है तो हम चकित रह जाते हैं। आपको बता दें कि इन दिनों एक ऐसे ही जीव के बारे में जानकारी सामने आ रही है। ये एक दुर्लभ सांप है जो बिल्कुल हरे रंग की घास की तरह नजर आता है, और ये अगर घास में छिप जाए तो इसे ढूंढना भी मुश्किल होगा। इसे देखने के बाद आपको लगेगा कि जैसे आप घास को देख रहे हो। हरे रंग का ये दुर्लभ सांप थाईलैंड में पाया गया है और ये हरे रंग के फर से ढका हुआ है। ड्रैगन की तरह नजर आ रहा ये सांप करीब 60 सेंटीमीटर लंबा है। एक स्थानीय शख्स को ये मिला था और वो इसे अपने घर ले आया। वहीं कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि रोएदार सांप फूले हुए चेहरे वाला वाटर स्नेक है जिसके शरीर पर काई और शैवाल उग जाते हैं। इसे होमालुप्सिस बुकाटा के नाम से भी जाना जाता है और ये हल्का विषैला होता है और दक्षिण पूर्व एशिया के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में इसे पाया जाता है।
हरी हरी वसुंधरा पे नील नील ये गगन कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी, ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है।
साथियों, आपने कुंभकर्ण के बारे में सुना होगा जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी नींद 6 महीने की होती थी। लेकिन आपको बता दें कि अमेरिका में एक महिला है जो लगातार 2 हफ्ते तक सोती रहती है। पिछली बार तो नींद के चक्कर में वो अपना बर्थडे भी नहीं मना पाई। उसके जन्मदिन की पार्टी हुई लेकिन स्वयं वो पार्टी में शामिल नहीं हो पाई। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो आपको बता दें कि 24 वर्षीय बेला एंड्रयू एक नर्स है और वो स्लीपिंग ब्यूटी सिंड्रोम से ग्रसित है जिसकी वजह से उन्हें लगातार सोना पड़ता है। कभी कभी तो वो 2-2 हफ्ते तक नींद से नहीं जागती। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक पहली बार 2016 में उन्हें इस बीमारी का अनुभव हुआ था जब एक पार्टी के बाद वो घर लौट कर आई और सोई तो 10 दिनों तक उनकी नींद ही नहीं खुली। इसके बाद कई बार ऐसा हुआ और हर 4-5 हफ्ते में एक बार वो 10 से 12 दिन लगातार सोती रहती हैं। इससे कुछ दिन पहले ब्रिटेन में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था जब 21 साल की रोडा रोड्रिग्वेज डियाज लगातार 3 हफ्तों तक सोती रही थी।
ख्वाबों का सिलसिला, ख्वाबों में यादों का सिलसिला, सभी यार हमसे देखो खफा हो गए।
कहते हैं खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, और ये बात ब्राजील में साओ पाउलो की ब्रील एडम्स वीटली के ऊपर पूरी तरह से लागू होती है। ब्रील ने कभी भी अपनी दिव्यांगता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वो हेनहार्ट सिंड्रोम के कारण बिना हाथ और पैर के पैदा हुई थी, लेकिन उसने एक अच्छा जीवन साथी पाकर खुद को डांस करना सिखाकर और अपने शानदार मेकअप लुक को बनाकर जीवन की बाधाओं पर जीत हासिल कर ली है। अपनी अनूठी खूबियों के कारण आज वो इंटरनेट सेंसेशन बन चुकी है। 24 साल की ब्रील एडम्स व्हीटली का जन्म जिस हैनहार्ट सिंड्रोम के साथ हुआ था वो एक रेयर कंडीशन है जिसके कारण इंसान का जन्म विकृत अंगों के साथ हो सकता है, यहां तक कि उसका जन्म बिना अंगों के भी हो सकता है। उन्हें अमेरिका के यूटा में एक परिवार ने गोद ले लिया था और वो एक ऐसी माँ के साथ पली बढ़ी जिसने उन्हें हमेशा आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने ब्रील को मोटिवेट किया कि वो अपनी शारीरिक सीमाओं को अपने ऊपर कभी हावी न होने दें। अब ब्रील ने सोशल मीडिया पर करीब 40 लाख फॉलोअर्स बना लिए हैं जहां वो डांस करते हुए और मेकअप लुक बनाते हुए अपने क्लिप शेयर करती हैं। साथ ही अपने पति एडम के साथ अपने जीवन के बारे में जानकारी भी देती हैं। वो बताती हैं कि हाथ पैर से लाचार होने के बाद भी उन्हें सोने जैसा खरा पति मिला है। ब्रील ने जून 2021 में अपने पति एडम से मुलाकात की थी और फिर शादी कर ली थी।
जिंदा है तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर।
तो श्रोताओं, दुनिया रंग बिरंगी में आज बस इतना ही। यदि आप इस कार्यक्रम के बारे में कोई जानकारी हमसे साझा करना चाहते हैं तो आप हमें duniyarangbirangi10@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। फिर मुलाकात होगी आपसे। नमस्कार।
दुनिया रंग बिरंगी के बाद अब डालते हैं नजर इतिहास के पन्नों पर और देखने की कोशिश करते हैं कि आज के दिन यानी कि 9 अक्टूबर को इतिहास में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं दर्ज हैं। आज ही के दिन 9 अक्टूबर 1776 में अमरीकी संसद ने आधिकारिक तौर पर देश का नाम यूनाइटेड कॉलोनीज से बदलकर संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका किया था।
1834, the Dublin-Kingston Railway officially opened. It was the first public railway on the island of Ireland. It linked Westland Row in Dublin with Kingston Harbour in County Dublin.
और सुभद्रा, सिलाई मशीन से हम में से कौन परिचित नहीं है?
Yes, of course.
और कितनी जरूरी चीज है हमारे जीवन की सिलाई मशीन। अमरीकी आविष्कारक इसहाक सिंगर ने आज के दिन 9 अक्टूबर 1855 में सिलाई मशीन मोटर का पेटेंट कराया था।
1936, the Hoover Dam begins creating hydroelectric power, which it sends over transmission lines spanning 266 miles of mountains and deserts to run the lights, radios and stoves of Los Angeles. And 1985, on what would have been former Beatle John Lennon and 45th birthday, a section of Central Park in New York City is christened and Strawberry Wheels and in his memory. 1990, 1,000 radio stations from over 100 countries around the world simultaneously broadcast Lennon's Imagine in honor of what would have been his 50th birthday. Of course, we are talking about this in a bit when we get to our birthday section. So don't tune out, stay with us.
और सभी देशों के बीच पत्रों के आवागमन और जनरल पोस्टल यूनियन के गठन के लिए बर्न स्विट्जरलैंड में 22 देशों ने आज ही के दिन 1874 में एक संधि पर दस्तखत किए थे, तभी से 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस के रूप में मनाना शुरू किया गया। और आज ही के दिन स्कॉटिश वैज्ञानिक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और उनके सहयोगी थॉमस वॉटसन ने 1876 में पहली बार लंबे समय तक टेलीफोन पर बातचीत की थी और इस बातचीत के दौरान दोनों के बीच 2 मील की दूरी थी।
And 2007, singer Josh Groban releases his Christmas album, Noel. It becomes the top-selling album of the year and one of the best-selling Christmas albums of all time.
और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर सी राजगोपालाचारी ने आधिकारिक रूप से आज ही के दिन यानी 9 अक्टूबर 1949 को प्रादेशिक सेना के पहले शिविर का उद्घाटन किया था। तो ये तो बात हुई इतिहास में दर्ज कुछ घटनाओं की, और अब हम बात करेंगे उन व्यक्तित्वों के बारे में जिनकी आज पुण्यतिथि है या आज के दिन जिनका जन्म हुआ था। और इस कड़ी में सबसे पहला नाम हमारे सामने है मशहूर संगीतकार रविन्द्र जैन का, एक ऐसी शख्सियत जिनके गुणों का बखान जितना किया जाए उतना ही कम है। 28 फरवरी 1944 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में जन्मे रविन्द्र 7 भाई बहनों में तीसरे नंबर के थे। आज उनकी पुण्यतिथि है। वे उन संगीतकारों में रहे जिन्होंने कविता, शायरी और गीत की समझ को समेटते हुए लीक से हटकर कुछ गंभीर काम किया। चितचोर, राम तेरी गंगा मैली, गीत गाता चल, नदिया के पार जैसी कई फिल्मों में शानदार गीत और संगीत देने वाले रविन्द्र जैन जन्म से ही दृष्टिबाधित थे। 1972 में उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। उन्होंने न सिर्फ अच्छा गाया बल्कि एक से एक बढ़कर फिल्मों में संगीत भी दिया और कई प्रसिद्ध गीत भी लिखे, और उन्हीं की फिल्म का एक हम ये गीत आपको सुनवा रहे हैं। इस तरह का कर्णप्रिय और सुमधुर संगीत रविंद्र जैन ने कई फिल्मों में दिया, और खास तौर पर राष्ट्रीय प्रोडक्शन की फिल्मों में उन्होंने बहुत एक से एक बेहतरीन बढ़कर के फिल्मों में संगीत दिया। फिल्मों के अलावा रविंद्र जैन ने टीवी की दुनिया का मशहूर पौराणिक सीरियल रामायण का भी संगीत दिया था, साथ ही कई चौपाइयों को उन्होंने अपनी आवाज भी दी थी। बेशक रविंद्र जैन आज नहीं है, मगर उनकी कीर्ति शेष है और वो धुनें भी जिसे लोग आज भी याद कर रहे हैं और करते रहेंगे।
Time to remember the peace activist, poet, songwriter, a co-leader of the legendary Beatles, John Lennon, whose birth anniversary it is today. Hailing from Liverpool, England, he went on to achieve great fame and success not just in his native country, but throughout the world. Lennon was honored with the Recording Academy Lifetime Achievement Award in 1991 and posthumously again in 2014 as a member of the Beatles. Lennon gave a great deal of his money to charities, but rarely publicized his donations. He staged many benefit concerts, usually aimed at supporting world peace. He headlined the 1610 Toronto Peace Festival, played a 1972 benefit concert in New York's Madison Square Garden to raise money for mentally handicapped children. Sadly, friends, his life was cut short by a deranged man who shot him to death when he had just turned 40 years old in the year 1980. A snatch of his peace song, Imagine, followed by the very melodic sitar and guitar-based Norwegian Wood, a Beatles classic. Sarod Maestro Amjad Ali Khan celebrates his birthday today. Friends, this legend's original name was Masoom Ali Khan. Born into a family of classical musicians and sarod players, Amjad went on to modify the instrument and often experimented with it. This helped him outshine many stalwarts.
जी, इनके पिता उस्ताद हाफिज अली खान ग्वालियर राजदरबार में प्रतिष्ठित संगीतज्ञ थे। इस घराने के संगीतज्ञों ने ही ईरान के लोकवाद्य रबाब को भारतीय संगीत के अनुकूल परिवर्तित कर सरोद नामकरण किया। अमजद अली खान ने 12 वर्ष की कम उम्र में ही एकल वादक के रूप में अपनी पहली प्रस्तुति दी थी, और इन्होंने शास्त्रीय संगीत में अभिनव परिवर्तन के अलावा बच्चों के लिए गायन और वाद्य संगीत की भी रचना की।
And of course, you are listening to a sample played by Amjad Ali Khan, tabla by Kumar Bose and Anindo Chatterjee. Birthday of Jackson Brown, German-born American singer-songwriter, pianist, guitarist who helped define the singer-songwriter movement of the 1970s. His musical style ranged from romantic folk rock ballads to up-tempo rock and songs that speak of social political activism.
She's got to be somebody's babe.
Today is also the birthday of jazz fusion musician Keith Garrett, composer who gained recognition in his youth as a member of the Duke Ellington Orchestra and for his lifetime with Miles Davis Band.
और अब वक्त हो रहा है श्रोताओं, हमें आपसे यही अनुमति लेनी होगी कार्यक्रम आज सवेरे संपन्न करने की विशाल और सुभद्रा को अब दीजिए अनुमति.
स्टे ट्यून्ड, वी आर कमिंग अप नाउ विद समाचार प्रभात हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15. थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे. नमस्कार.